हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 19। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम् चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। इति क्षेत्रम, इति मतलब इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार अभी भगवान ने पूरा बताया ना, अर्जुन ने जो क्वेश्चन किए उसके बाद में जो जो भगवान ने बोला है उस प्रकार। क्षेत्रम, क्षेत्रम का मतलब होता है कर्म का क्षेत्र, यानी यह शरीर। तथा ज्ञानम, और ज्ञान क्या होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे ना, अहंसा साध की, गुरु की शरण में जाना, मेरी अनन्यभक्ति, सहनशीलता, ये सब ज्ञान। और ये हम जानने योग्य, क्या जानने योग्य, आत्मा और परमात्मा, जो इस क्षेत्र को जानते हैं उनको जानना। और आगे बताया, ज्ञानम येयम चोक्तम का मतलब, उक्तम मतलब जो मैंने कहा है, अभी जो ये सब बताया है, समासत संक्षिप्त में, ये बताया मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया, बहुत शॉर्टकट में बताया है, मुझे बहुत ये डिटेल से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बस मैंने आपको संक्षिप्त में बताया है, लेकिन फिर भी ये हर किसी को समझ में आने वाली चीज है ही नहीं। क्योंकि जो प्रेम करते हैं ना, वो अपने प्रेमी के संक्षिप्त यानी कि कोड वर्ड्स को भी समझ जाते हैं, और जो आपसे प्रेम नहीं करते उनको आप इतना डिटेल से बोलो तो भी समझ में नहीं। अक्सर प्रेमियों की कोड वर्ड्स लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर भगवान भी बोल रहे हैं, मद भक्त, जो मेरे भक्त होंगे, एतद विज्ञाय, एतद मतलब ये सब जो अभी मैंने शॉर्टकट में बताया संक्षिप्त में, एतद विज्ञाय, विज्ञाय का मतलब होता है जान देंगे, सिर्फ कौन, मेरे भक्त ही वो सब जान सकते हैं। मद्भावाय, मद्भावाय का मतलब होता है मेरे स्वभाव का, या मुझे मद्भावाय उपपद्यते, उपपद्यते मतलब प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये हर किसी, ये टॉपिक जो है वो दूसरे लोग समझेंगे तो भी, सुनेंगे ना तो भी उनको ये बात समझ में आएगी नहीं कि परमात्मा और भगवान या आत्मा और परमात्मा दोनों एक क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं हो सकते, और भगवान कैसे हर जगह है, हमारी समझ से इंद्रियों को पावर दे रहे हैं लेकिन वो इंद्रिय रहित हैं, तो इंद्रिय रहित कैसे हैं, क्योंकि उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं, ये केवल भक्ति ही के द्वारा हम समझ सकते हैं। साधारण लोग, भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, मद भक्त एतद विज्ञानम। अब यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि जिस जिसको समझ में आया वही भक्त है, लेकिन अगर मैं अपने लिए कहूं तो मुझे समझ में आया लेकिन मेरे अंदर वो भक्ति की क्वालिटीज नहीं, क्योंकि भक्ति का क्या मतलब होता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावर्तम अनुकूल है न कृष्णानुशीनलम भक्ति उत्तमम। हम, मैं अपने को, आप सब बहुत शुद्ध आत्मा हो जो कृष्ण प्रेम इतना है आपके हृदय में, और आप भगवद गीता भगवान के वाक्य को सुनने का इतना उत्साह है आपके अंदर, इतना हृदय से आप लोग रोजाना सुनते हो, लेकिन मैं अपने विषय में कहूँ तो भक्ति नाम के लिए भी नहीं है, नाम भक्ति का भाव भी नहीं आता है, फिर ये समझ में कैसे आया, ये समझ में इतना मतलब आया होगा तो मैं बताने की योग्यता, ये समझ में इसलिए आया क्योंकि किसी भक्त की करुणा है, ये मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मुझे इसलिए नहीं समझ में आया कि मेरे अंदर कोई भक्ति है, मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि श्री प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव, महान भक्त की मेरे ऊपर करुणा है कि मैं उसको समझकर आपको समझा सक रही हूँ। तो ऐसा मैंने सुना था, राधा गोविंद स्वामी बता रहे थे कि देखो, लोहा जो होता है उसमें चुंबकीय शक्ति नहीं होती, मतलब उसमें स्टिक करने का पावर नहीं होता, लेकिन जब लोहा मैग्नेट को स्पर्श करता है, यानी कि एक मैग्नेट का आपके पास पीस हो और उस पे एक आप लोहे का एक प्लेट लगा दो तो वो चिपक जाएगी ना। अब एक साइड पे लोहा है और एक साइड पे मैग्नेट है, अब आप मैग्नेट के पास नहीं, लोहे को भी अगर कोई चीज आप उसके ऊपर भी स्टिक करोगे तो वो भी चिपक जाएगी, समझ में आ रहा है ना। लोहे जिस साइड पे लोहा है, हालांकि लोहे के अंदर ये पावर नहीं है वो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन क्योंकि वो चुंबक के संपर्क में है, क्योंकि उसने मैग्नेट को स्पर्श किया हुआ है, इसलिए उसके अंदर इतना पावर आ जाता है कि वो भी मैग्नेट जैसी क्वालिटीज रखता। तो वास्तव में हम भक्त नहीं, अच्छे शुद्ध भक्त आप हो सकते हो, बट मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि श्री प्रभुपाद जैसे महान भक्त के द्वारा हम ये समझ रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा बहुत भगवान के भगवान ने जो इसमें समझाने का प्रयास किया है या श्री प्रभुपाद ने जो हमें बताया उसको समझने के अधिकारी बने हैं। श्री प्रभुपाद जी इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया शरीर क्या है या क्षेत्र, ज्ञान क्या है, जो ज्ञान क्या है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, और ज्ञेय क्या है आत्मा और परमात्मा के विषय को समझना। यह ज्ञान तीन वस्तुओं में कहा गया है, यानी कि तीन चीजें बताई, ज्ञाता ज्ञेय और जानने की विधि। ज्ञाता कौन है, दो ज्ञाता है, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। ज्ञेय क्या है, उस ज्ञाता को, दोनों ज्ञाताओं को जानना, और जानने की विधि क्या है, ज्ञान, जो ज्ञान है वो जानने की विधि है। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। अब की कौन तीनों, ज्ञाता ज्ञेय तथा जानने की विधि, ये मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है। ये टॉपिक भक्तों का है, उन्हें के लिए ये सुरक्षित रखा गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी साफ साफ कहा, मद भक्त एतद् विज्ञानम्, और श्री प्रभुपाद भी कह रहे हैं पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में समर्थ नहीं होते। हमारे जैसे पतित लोगों के लिए नहीं है ये, समझने में हमें नहीं आएगा जब तक कि हम किसी शुद्ध वैष्णव की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। अद्वैतवादी क्या होते हैं, जो ये मानते हैं कि भगवान में और आत्मा में, आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत नहीं है, दोनों एक ही है। अद्वैत यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आखिर में क्या होगा, ज्ञान ज्ञेय और जानने योग्य, यानी आत्मा परमात्मा और ये सब एक हो जाएंगे। लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। भक्त तो अपनी इस हैसियत को कि मैं कृष्ण का दास हूँ उसे किसी स्टेज पर खोना नहीं चाहते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। यानी कि ज्ञान का क्या मतलब है, ज्ञान को आपका ज्ञान उन्नत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप कृष्ण के करीब जाते हो। हम भौतिक चेतना द्वारा संचलित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि वैसे तो क्या हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं। भौतिक चेतना क्या है, ये तीनों गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हमें हर वक्त डिस्टर्ब करते रहते हैं। हम कृष्ण की तरफ इतना ज्यादा बस भौतिक ही चीजें हमें याद आती रहती हैं, कभी सत्वगुण में होते हैं, कभी रजोगुण, ख्वाहिशात हमारा जो माया के प्रति जो आकर्षण है वो हमें परेशान करता है। लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना, लेकिन अगर कोई सौभाग्यवश अपनी सारी चेतना को कृष्ण के कार्यों में डाइवर्ट कर देता है, सारी कृष्ण के अंदर अपनी चेतना को रख देता है और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, और क्या सोचते हैं कि वासुदेव सर्वम इति, कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर मैं अपने मन को लगाऊं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं देखूं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं सोचूं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ही हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के भक्त बन जाएंगे, और भक्त ही केवल इस ज्ञान को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान कोई लक्ष्य नहीं है, ज्ञान हासिल करना केवल एक फर्स्ट स्टेप है कि आप पूर्णतया भगवान की भक्ति को समझना चाहते हो, वो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा कि क्या हूं मैं, मेरी रियलिटी क्या है, कृष्ण क्या है, मैं किससे बना हूं, मेरा ये शरीर क्या है, ये सब ज्ञान है ना, ये क्यों हासिल किया जाता है, ताकि मैं, अगर मुझे पता होगा तो सिद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भगवदगीता 7 पॉइंट, हाँ पहले तो 16 में बताया, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी तबरत शबा, कि मेरे पास जो आते हैं वो सारे तो सुकृतिनो हैं, अच्छे ही हैं। कौन कौन आते हैं? आर्त आते हैं, जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, यानी दुखी आते हैं, जाने की ख्वाहिश करने वाले, दौलत हासिल करने की ख्वाहिश करने वाले और ज्ञानी। लेकिन 17 में इतना क्लियर ये बोला, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, लेकिन उनमें से ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जब उसे रियल ज्ञान हो जाएगा तो क्या, नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, वो कंटिन्यूअस एक ही चीज में लगा रहेगा, एक भक्तिर विशिष्यते, सिर्फ भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानेगा, प्रियो ही ज्ञानी नोत्तरथम। और जो ज्ञानी होगा, जिसे रियलिटी का पता होगा कि मैं क्या हूं, वो क्या करेगा, वो मुझसे प्यार करना शुरू करेगा, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही ये है, ज्ञान का लक्ष्य ये है कि कृष्ण प्रेम। प्रियो ही ज्ञानी नोत्तरथम सच माम सच मम प्रिय, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार करता है, और बदले में मैं उसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ ज्ञानी के विषय में, आप अगर पॉसिबल हो तो आप 7.17 देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज का वर्णन किया गया है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 15वें अध्याय में भी इसकी बहुत विशद व्याख्या की गई है, 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा कि क्या व्याख्या की गई। अब हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि श्लोक नंबर 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतनाधृति, अब पॉसिबल हो तो प्लीज देखिए 6 और 7 श्लोक को। भगवान कहते हैं, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचैन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतनाधृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतं। महाभूतान कौन से? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, कौन? 3 गुण, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंद्रियाणि दशैकम, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। एकम मन, पंचम चेन्द्रिय गोचर, 5 इंद्रियों के विषय, यानी कि अगर काउंट करें तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय और 5 महाभूत, 5 5 5 20 हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार 23 और 1 जो अव्यक्त है यानी गुण। और आगे भगवान ने कहा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतसा एतत् क्षेत्रम, ये सब इच्छा द्वेष सम दुख सुख और ये सब एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र है समासेन सविकार, मतलब समासेन मतलब ये सब क्या है, संक्षेप में मैंने तुमको ये बताया है, ये सब उदाहरितम मेरे द्वारा कहा गया है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक तत्वों का जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है, कहां पर? 6 और 7 में। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, ये सब जो अभी मैंने आपको बताया 24 तत्व, उससे क्या होता है, कार्य क्षेत्र, मतलब ये शरीर उसका निर्माण होता है, उसको स्टेब्लिश किया जाता है इन 24 तत्वों से। तथा श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक, फिर देखना पड़ेगा कि श्री प्रभुपाद जी, अब मैं प्रपोर्ट के हिसाब से चल रही हूँ, देखो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं 8 से लेकर 12 तक क्या है। भगवान ने कहा, आमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यात्मा विनग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असत्य अनभिश्वंग पुत्र दान गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपद्यते इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वं अरतिर्जनसंसिधिम् आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग, तो बहुत दफा इसको समझा है, फिर भी ट्रांसलेशन पढ़ लेती हूँ। मेरा कर्तव्य है कि कंप्लीट करूं। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों का अनुभव, वैराग्य, संतान, स्त्री, गर्भ, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जनसमूह से विलगाव, यानी कि आम लोगों की तरफ ना हमारा अट्रैक्शन ना हो, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य के दार्शनिक की खोज, यानी कि रियलिटी क्या है, भगवान क्या है, उसके विषय में खोज करना, इन सबको मैं ज्ञान कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो बेवकूफी है। आगे बताया 8.8 से लेकर 20 तक अमानित्व से लेकर तत्व विज्ञानम दार्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। पहले बताया आत्मा को कैसे जान सकते हैं, जो शुरू में बताया ना अमानित्व अदम्बन, उससे क्या होगा आत्मा को समझ सकते हो कि मैं आत्मा क्या, भगवान का दास है, और बाद में क्या है कि भगवान के विषय में जाना, तत्वदर्श को जानना, भगवान की भक्ति करना, इससे क्या आप भगवान को जान सकते हो। आगे बताया 13 से लेकर 18 में अनादि परमम से लेकर रिधि सर्वस्य विष्ठति तक जीव आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। एक बार फिर से पीछे जाएंगे 13 से लेकर 18 तक। टेक्स्ट 13, भगवान ने कहा येयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्यम् तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। अब ये दो चीजें हैं, पहली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने बताया अनादि मत परमम, ये पहला जो यह ब्रह्म या आत्मा है जो अनादि है, और मत परमम मेरे आदिन है, और आगे बताया इस भौतिक जगत के कार्यकलापों से परे है लेकिन आध्यात्मिक है, लेकिन फिर भी मेरे आदिन है। और उसके बाद 14 से भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा जो रियल ज्ञेय है उसके विषय में बताना शुरू किया कि सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वत्रोक्षिशरो मुखम सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमा सर्वम आवृत्य तिष्ठति, यानी उनके हाथ पांव आंखें से तथा मुंह उनके कान सर्वत्र हैं, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अविस्थित है, यानी कि हर जगह पर रहते हैं, हर जगह पर हैं, तभी तो हम सबको भगवान श्री कृष्ण को हम महसूस करते हैं हर जगह पर, परमात्मा का अस्तित्व हर जगह पे। आगे बोला सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारे इंद्रियों को वही जो है वो पावर देते हैं लेकिन फिर भी इंद्रिय रहित है। इंद्रिय रहित को श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भौतिक इंद्रियां नहीं है लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, तभी तो वो हमें देखते हैं, हमें स्पर्श, हम उनको स्पर्श उनका अनुभव करते हैं, हम जो प्रसाद उनको देते हैं, अगर उनका मुख नहीं होता, उनके नेत्र नहीं होते तो उनको कैसे रियलाइज होता। असक्तम सर्वभृत चैव, वो किसी से आसक्ति नहीं रखते हैं, निर्गुणम गुण भोक्त, वो निर्गुण है, कोई भी उनके अंदर आसक्ति या फिर उनके अंदर ये तीनों प्रकार के गुण नहीं है। आगे 16 में बहिरंतश भूताना अचरम चरमेव च, चाहे चर हो चाहे अचर हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके बाहर और अंदर वो है सूक्ष्मत्वाद सूक्ष्मत्व सॉरी सूक्ष्मत्वादत्त विज्ञेयम् दूरस्थम शांति के चतत, यानी वो इतने सूक्ष्म है कि वो हमारे इन स्थूल नेत्रों से स्थूल चक्षुओं से नजर नहीं आते हैं, शांति के चतत, लेकिन फिर भी अंत के मतलब हमारे हृदय में रहते हैं, उनका निवास स्थान तो हमारे हृदय है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्त च तज्ज्ञेयम् सगुण ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च, यानी कि वो अविभक्तम च भूतेषु, यानी कि परमात्मा ऐसा लगता है कि सारे जब सारे प्राणियों में वो विभाजित है, डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन फिर भी वो कभी भी विभाजित नहीं होता। यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी बतानी थी, मैं चाह रही थी कि उसको देखो, परमात्मा जो है, मतलब जो भगवान है, वो विभक्त नजर आते हैं, विभाजित नजर आते हैं, लेकिन सबके हृदय में है। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा परमात्मा दूसरों के हृदय में, थोड़ा थोड़ा दूसरों के हृदय में, थोड़ा थोड़ा परमात्मा, परमात्मा पूर्ण होते हैं। वही परमात्मा मेरे हृदय में है जो आपके हृदय में है, वो पूरे के पूरे समस्त जीवों में है। ऐसा ऐसा बता, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, यानी कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वो कभी भी विभाजित नहीं होते। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा टुकड़ा आपके हृदय में रखा हुआ है परमात्मा का, थोड़ा मेरे हृदय में, वो पूरे के पूरे सब जगहों पे हैं, सब जीवों के हृदय में है, वह एक रूप में स्थित है, एक ही है, वही परमात्मा है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करते हैं, लेकिन वह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करते हैं और सबों को जन्म देते हैं, यानी कि जो भी खो रहा है तुम्हारे साथ, उसका मूल स्रोत जो है वो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में है। ज्योति शाम अपि तज्ज्योतिष, यानी कि तज्ज्योतिष, यानी जितने भी ज्योतिपुंज हैं, जितने भी ज्योतियां हैं, जितने भी चमकदार या प्रकाशमान चीजें हैं, उनमें वो ज्योति शाम है, और तमसः परम उच्यते, और अंधकार से बिल्कुल दूर है। आगे आखिरी लाइन है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, वो ज्ञान है, ज्ञेय मतलब ज्ञान योग्य है, ज्ञान गम्यम यानी ज्ञान हासिल करने के बाद जो जगह आपको चाहिए, जो लक्ष्य, वो भी है। हृदि सर्वत्र सर्वस्य विष्टितम, और बहुत ही सुंदर कि वो किधर और जगह पर नहीं मिलेंगे, वो ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम आपके हृदय में रहता है। हृदय पवित्र हो जाएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा, और हृदय पवित्र करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सेतो दर्पण मार्जनम हरिनाम संकीर्तनम, केवल हरिनाम संकीर्तन से ही हृदय मार्जन हो जाएगा, तो ये सब पवित्र हो जाएंगे, आप सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए इस अध्याय में कहा, मद भक्त एतद् विज्ञानम, कि मेरा भक्त ही इसको समझ सकता है। और भक्त कौन होता है? जिसका हृदय मार्जन हो गया, और हृदय मार्जन हो जाएगा जब आपके हृदय क्लीन हो जाएगा, उसमें से काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वंद नफरत दूसरों की निंदा ये सब गंदगी निकल जाएगी, तो किधर दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य, ये सबके हृदय में विराजमान है, और जैसे हृदय साफ हो गया वो प्रकट हो जाएगा। तो शिवपा जी कहते हैं कि जीव आत्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है, कहाँ तक? 13 से 18 तक। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हो गया है, यानी कि तीन चीजें भगवान श्री कृष्ण ने अब तक बता दी, टोटल 6 पूछ चुकी थी। क्या है? कार्य क्षेत्र यानी शरीर, उसके बारे में पता चल गया। जानने की विधि तथा आत्मा, जानने की विधि क्या है? ज्ञान, जिसके जरिए हम, और आत्मा और परमात्मा की रियलिटी, की आत्मा क्या है, मत पर है, और परमात्मा क्या है, इतना हम उनके बारे में पढ़ चुके, वो है। अब आगे बताएं, यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है। अब विशेष उल्लेख मतलब स्पेशल, यहाँ पर उल्लेख मतलब बताया गया, स्पेशली में ये बताया गया है कि क्या बताया गया है, विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक तरह से समझ सकते हैं। अब ये सब समझने के लिए हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। अब अगर भगवान के भक्त बनेंगे तो लाभ आएगा, वरना तो फिर वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्त बनेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, और लाभ क्या है? परम लक्ष्य अपना जो रियल लक्ष्य है, जैसे मैं कल बता रही थी कि विजय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की विजय, तो परम लक्ष्य श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करना, परमेश्वर कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। उसको प्राप्त कर सकेंगे कब? कब? जब भक्त बन जाएंगे। और भक्त कब बनेंगे? जब हृदय मार्जन होगा। हृदय मार्जन कब होगा? जब महामंत्र का जप करेंगे। और जब क्लियर हो जाएगा ना ये सब चीजें, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरे शब्दों में श्री प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में एक बहुत ही खास सूचना दे रहे हैं हमारे लिए, कि दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।